शाही श्लोक हो गया ना, इकतालीस में चलेगा ना। अब विकार के ही मिथ्यापने में तीन हेतु कहते हैं। निस्तत्वम भासमानम च व्यक्तमुत्पत्ति नाशभाक तदुत्पत्तो तस्य नाम वाच्या निष्पद्यते नृभिः। व्यक्तम, व्यक्त शब्द का वाच्य घटाधिकार्य। ये सब जल्दी करो।
व्यक्त जी मतलब जी
व्यक्त मैंने प्रकट।
अच्छा जी, प्रकट भी। हाँ, अव्यक्त कैसे नहीं?
अव्यक्त नाम प्रकट गुप्त। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। पहला भूत प्राणी कैसे थी? अव्यक्त, फिर मध्य विच व्यक्त हो। व्यक्त शब्द, व्यक्त शब्द का वाच्य घटाधिकारी है। व्यक्त शब्द व्यक्त हो गया ना, जिसको घाट प्रगट हो गया। हाँ, घाटाधिकारी है। निस्तत्वम भासमानम, स्वरूप से असत होता है, वो भी भासता है, स्वरूप से है नहीं, हो कड़ा पर प्रतीत हो रहा है। क्यों कड़ा? क्यों नहीं भी, वो तो दिखाई दे रहा है। अंदर कड़ा नहीं है, मिट्टी मिट्टी है, कड़ा नहीं है, वो तो मिट्टी मिट्टी है। हाँ, वो तो मिथ्या है, वही मिथ्या है। चा उत्पत्ति नाश भाक, उत्पत्ति विनाश वाला हुआ भी प्रतीत होता है, पहले उत्पन्न हुआ फिर नाश वाला है, और फिर उत्पत्ति नाश वाला हुंदा होया भी प्रतीत हो गया। तद उत्पत्तो उस कार्य की उत्पत्ति के अनंतर निधि वाचा, मनुष्य वाक इंद्री से तस्य नाम उस कार्य के शब्दात्मक स्वरूप को निष्पद्यते व्यवहार करते हैं, अर्थात उत्पन्न कार्य को वाग इंद्रिय जन शब्द स्वरूप में, शब्द स्वरूप से घट आदि के शब्द से व्यवहार करते हैं। उन कड़ा कहने लग गए मिट्टी, कार्य से सतपने में हेतु कथन करते हैं। कार्य जड़ा है और सत हुंदा है, कार्य क्यों सत हुंदा? जो उत्पत्ति होगी, जड़ा उत्पन्न होगा, जड़ा जमूगा वो मरूगा भी, क्या सत ही हुआ? नाश भी उची जिथो पैदा होया उची होगा, है ना? बुलबुला पानी च बने
पानी आकार रूप आ गया ना
जी,
कार्य आकार रूप,
आकार रूप,
आकार रूप मिथ्या,
आकार मिथ्या। व्यक्ते नष्टे नष्टे पी मा नामे तत् नृ वक्तेश्व वर्तते तेना नामना निरूपत्वाद व्यक्तम तद रूप मुच्यते। व्यक्ते नष्टे अपि, कार्य रूप व्यक्त नष्ट हो जाने पर भी एतद नाम, कार्य में अभिन्न नाम अर्थात शब्द व्यक्तेषु शब्द प्रयोग करने वाले मनुष्य के मुख में अनुवर्तते पश्चात भी विद्यमान रहता है। कार्य नष्ट हो गया, मान लो कि बंदा नष्ट हो गया, मर गया, परलोक सुधार गया, स्वर्ग सुधार गया, ना नहीं पिछे चलता उदा। हाँ, तो फिर फलाना बंदा जरा सी इदा सी इदा नहीं कर देंगे अपने
शब्द से नालो जिंदा है।
हाँ, बस मतलब की कह रहे, वो कह रहे भी खाली शब्द ही है बाणी च, जो सीगा उदो भी नहीं सी, खाली शब्द मात्री है। व्यक्तम तेना नामना का कारी उसी नाम से अर्थात वाणी द्वारा व्यवहार किए जाने वाले उसी शब्द से निरूपत्वात तदरूपम निरूपण करने के योग होने के कारण नामात्मक ही उच्चते कहा जाता है। खाली नाम ही है उदा, ताइयों तो कहते ना नाम और रूप मिथ्या है, कड़ा भी मिथ्या, उदा नाम भी मिथ्या। सत की है मिट्टी का है, सत्य मिट्टी सत्य। कहा जाता है भाव ये है कि घट शब्द स्वरूप ही घट है। की कह रहे शब्द जेड़ा है ना, शब्द ओ ही कड़ा है, कड़ा असली मिट्टी वाला कड़ा नहीं है, बाणी जी आ लालो साहब किसी चीज का भी नाम खाली बाणी ची है, कोई वस्तु सत नहीं है। वाचा रंभन विकार नाम दे कहते बाणी का विकार है बस। घट शब्द स्वरूप ही घट है क्योंकि घट शब्द से उसका व्यवहार किया जाता है, जैसे घट शब्द के व्यवहार का विषय घट शब्द ही है। इस प्रकार तीनों हेतुओं का प्रसाधन करके अब अनुमान की रचना का प्रकार सूचन करते हैं, अर्थात घाटाधिकारी का असत्यपना अनुमान द्वारा दिखाते हैं। अब अनुमान से दिखाएंगे है ना। निस्तत्वाद विनाशत्वाद वाचारंभन नामतः व्यक्तस्य नातु तद्रूपम सत्यम कुचित मृदादिवत। व्यक्तस्य रूपम कार्य घाटादि का जो पृथु उद्बलनो उद्कारा उद्रकारा रूप है तद किंचित मृदादिवत, वह कुछ भी रूप मिट्टी आदि की न्यायी सत ना तू सत नहीं है। अंदर कड़ा कैसे भी है, छोटा है बड़ा है गोला है टेढ़ा है मेढा है, वो सत नहीं है क्योंकि निस्तत्वाद विनाशित्वाद वह वास्तव स्वरूप रहित है, उसका कोई स्वरूप नहीं और विनाशी है, उसका रूप रहित है वो, क्यों रूप नाम रूप मिथ्या है तो वैसे भी वो नाश वाला है इसलिए भी मिथ्या है। तथा वाचारंभन नामतः वाग इंद्रिय जन्य शब्द मात्र स्वरूप है। इस प्रकार कार्य की असत्यता का उपपादन करके अब कार्य के अधिष्ठान रूप मृत्ति का आदि की सत्यता का उपपादन करते हैं। अब सत वस्तु कही फिर मिट्टी, हुण मिट्टी का दसन लगे भी मिट्टी सत है कड़ा सत नहीं जे। व्यक्त काले तथा पूर्व मूर्ध्व मपेक रूप भाक सत्तत्व विनाशम च सत्यम मृद वस्तु कथ्यते। व्यक्त काले कार्य के स्त्री काल में, व्यक्त काले मैंने हाँ का जब कार्य उत्पन्न हो गया उस काल में, व्यक्त काले कार्य की स्थिति काल में तथा पूर्वम और कार्य उत्पत्ति के पूर्व काल में उर्ध्वम अपि कार्य के विनाश के उत्तर काल में
बाद में भी
हाँ एक रूप भाग सत्वम एकाकार वास्तव रूप वाली अविनाशम चा विकार के साथ नष्ट ना होने वाली मृद वस्तु सत्यम कथे थे, जो मृतिका वस्तु है वह सत्य ही कही जाती है। की कह रहे इन्हें मतलब की है, जदो कड़ा नहीं सी बनया उदो भी पहला मिट्टी सी, जदो कड़ा बन गया उदो भी कड़ा मिट्टी है, कड़े चो मिट्टी कट लो कड़े ना दी कुछ चीज
नाश हो गया
ता भी मिट्टी है। बाकी सब मिथ्या दे रहे क्योंकि दृष्टांत का एक अंश घटदा हुंदा पूरा नहीं घटदा। हुण जद कह दे आकाशत सर्वगतस्त नित्या वेद की सुरती है, आकाशवत सर्वगत नित्य आकाश की तरह वो सर्व व्यापक है, आकाश से जड़ है तो ब्रह्म भी जड़ हो जाएगा। बंदा ना बिलकुल वर्गा लगता आ बंदा ओ वर्गा लगता इदा कह नहीं कुछ कुछ अंश मिलते होंगे नैन नक्श मिलते होंगे थोड़े मोटे वो नहीं ऐसे ही गाठिया जी कार्य समूह यदि सत नहीं है तो आरोपित रजतादि की जैसे अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्ति होती है उसी प्रकार कार्य की निवृत्ति भी आधार मृतिका के ज्ञान से वो जानी चाहिए, इस प्रकार आशंका करते हैं। शंका कीती की है ना, शंका कीती कि जैसे सिप्पी दे विच चांदी प्रतीत हो रही है तो सिप्पी दे ज्ञान नाल चांदी निवृत्त हो जाती है, तो ये जिहड़ा तुसी कह रहे मिट्टी का सत है बाकी नहीं सत, तो फिर मिट्टी का ज्ञान हो जाए तो घड़ा नष्ट हो जाना चाहिए, घड़ा भी निवृत्त हो जाना चाहिए। इहदे कहने दा तात्पर्य यह है, अब ओह दसण लगे हुण व्यक्तम घटो विकारस चेते तैर नाम भीरीरितः अर्धश्चेद नृतः कस्माना नृतबोधे निवर्तते। ठीक से समझ लेना की कह रहे, व्यक्तम घटा विकारा चा, व्यक्त घट और विकार इति एतहि नाम भी, इन तीनों शब्दों में ईरितः अर्थ कहा जाने वाला वाला अर्थ कार्य रूप अर्थ, चेद अनृतः यदि मिथ्या है, नृत मैंने दस सत, अनृत मैंने मिथ्या झूठ जिन्हें कहने, यदि मिथ्या है अर्थात कारण से अतिरिक्त हुआ असत्य स्वीकार किया जाए तो, मृत बोध है मृतिका रूप कारण के ज्ञान होने पर कस्मात ना निवर्तते, क्यों नहीं निवृत्त हो जाता, जो तो मिट्टी का ज्ञान हो गया तो कड़ा क्यों नहीं निवृत्त हो गया, चांदी का सिप्पी का ज्ञान हो गया रजत निवृत्त हो गई, इदा यह भी हो जाना चाहिए जे ये सत हो। इष्टापति द्वारा शंका का परिहार करते हैं और उसे उसमें युक्ति भी कहते हैं, निवृत्ति एव जस्माते तत्सत्यत्व मतिर्गता ईदृग निवृत्ति रेवत्र बोध जाना स्वभाषणम, यस्माते तत्सत्यत्व मति, जिस कारण से तुम्हारी घाटादि विषय में सतत बुद्धि गता नष्ट हो गई है, मृतिका सत्य है घट आदि सत्य नहीं, इस प्रकार का निश्चय हो गया है, इस कारण से निवृत्ति वह घाट आदि निवृत्ति ही हो गया है, जब तो पता चल गया आप मिट्टी सत है घड़ा सत नहीं है तो बुद्धि जो तो निवृत्त हो ही गया है ना, आरोपित रजत आदि की अप्रतीति रूप निवृत्ति उपलब्ध होती है, सत्तत्व बुद्धि की निवृत्ति नहीं, ऐसी शंका करके रजतादि भ्रम निरुपाधिक भ्रम है, इसलिए अप्रतीति रूप भले ही हो प्रकृत में तो सुपाधिक भ्रम में सतबुद्धि का नाश भी निवृत्ति है। देखो दो प्रकार के भ्रम होंगे, एक होंगे निवृत्ति सुपाधिक एक निरुपाधिक, सुपाधिक भ्रम किन कहे, भाखड़ा का जल देखा कैसा है नीला, सफेद कपड़ा लै के डोब दो नीला हो जाना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं होता नीला, वो भ्रांति से प्रतीत हो रहा नीला नहीं है, सुपाधिक पता भी लग गया भी ये नीला नहीं है और फिर भी दिखाई दे रहा, सुपाधिक भरम आकाश आकाश का केड़ा रूप है, आकाश का केड़ा रूप है नी रूप, कोई रूप नहीं है तो नीला लग रहा है, निरपाधिक रज्जू में सर्प सिपी में चांदी, उसका ज्ञान होया दृष्टांत का ज्ञान होया उसी समय निवृत्त हो गया, इसका ज्ञान होने पर भी दिखाई दिंदा ही रहेगा, और सारे पता ला भी आकाश का कोई रूप नहीं तो देखने में नीला लगेगा, भाखड़े का जल नीला नहीं है पता है और फिर भी नीला दिखाई दे रहा, अधिष्ठान का ज्ञान है भी नीला नहीं है अधिष्ठान के ज्ञान होने पर भी निरुपाधिक अधिष्ठान का ज्ञान होने पर नष्ट हो जाएगा, ये फर्क हुंदा। ऐसे विपरीत से उत्तर कहते हैं, अतर ईदृक एव सुपाधिक भ्रम स्थल में सत्त बुद्धि का नाश ही बोध जा अधिष्ठान सत्य ज्ञान से जन निवृत्ति ही नाश के नाश को अंगीकार करना चाहिए, सतपने का ज्ञान जेड़ा ना वही नष्ट हो जाता, केड़ा भाखड़े केड़ा ज्ञान हो गया ये जल नीला नहीं है, बस इतना ज्ञान हो गया तो उस भ्रम रहे भ्रम नहीं जाने वाला, बस अधिष्ठान का ज्ञान हो गया। अभासनम चा अभासनम नातु स्वरूप से अप्रतीत निवृत्ति नहीं मानी जाती है। सुपादिक स्थल में उक्त निजम कहाँ देखा गया है, ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं। देखो तनु वो कहते सुपादिक ब्रह्म जेड़ा तुसी किथे देखिया, आंदे तनु दस दिने नदी के किनारे बंदा खड़ा कि किदां दिखाई दे रहा, सिर थले नु पैर उपर नु, तो उदा ही हो बंदा तो सीधा भरा खड़ा, जो क्यों दिखाई दे रहा, फिर वो सुपादिक ब्रह्म है, वो ज्ञान भी है पता भी है, सामना सीधा खड़ा फिर भी वो उल्टा दिखाई देगा, उस उपाधिक भर में तां करके दिखाई देता। अधिष्ठान का ज्ञान है भी बंदा तो सीधा ही खड़ा, तो सिर थले नु करके थोड़ी खड़ा, जो सिर थले नु करके खड़ गया फिर सीधा खड़ दिखाई देगा, फिर उल्टा इनू कहते हैं उपाधिक भर। उमान उदो मुखो नीरे भातो अप्यासी ना वस्तुतः तटस्थ मर्त्यावत जस्मिन वास्ता कस्याचित क्वचित नीरे अदो मुखः भातः अपि जल में नीचे मुख वाला प्रतीतमान हुआ भी पुमान वस्तुता ना अस्ति, पुरुष वास्तव में ऐसा नहीं है। कैसे कैसा नहीं है, मुख नीचे होगा। कस्याचित क्योंकि किसी भी विवेकी अथवा अविवेकी को तस्मिन उस अधोमुख पुरुष में तटस्थ मर्त्यवत तीरस्थ पुरुष में सतत्व के अभिमान की न्यायी आस्था सतत्व का अभिमान वचितना किसी देश में अथवा किसी काल में नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है, ये साफ ही खड़ा। हाँ जी हाँ जी उठ ही आऊगा। और इन्हें दस्तान उपाधि का भरम जेड़ा है ओदा ज्ञान भी अधिष्ठान का ज्ञान हो भी जाएगा तो जो भरम है निवृत्त नहीं होगा, वो दिखाई देता रहेगा। हम ए दृष्टान का ज्ञान है भी आ कि ये बंदा सीधा खड़ा तो फिर भी पैर नी उपर सिर नीचे दिखाई देगा। उरोपित वस्तु का असत्व के ज्ञान मात्र से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती, इस प्रकार आशंका का समाधान करते हैं। ईदृक बोधे पुमर्थत्वम मत मद्वैत वादिनाम मृद रूपस्य परित्यागाद विवर्तम घटे स्थितम अद्वैतवादिनाम अद्वैतवादिनाम अद्वैतवादियों को ईदृक बोधे अनात्मना आत्मानंद अतिरिक्त सबका मिथ्या तो निश्चय होने पर आत्मानु छड करके बाकी कैसे हैं, मिथ्या ऐसा निश्चय हो गया। पुमर्थत्वम अद्वितीय आनंद की अभिव्यक्ति रूप पुरुषार्थ सिद्ध होता है, मतम यह अभिप्रेत है। घट मृतिका का वृत्त विवर्त कार्य है, यह सिद्ध होने पर मृतिका के ज्ञान से घट में सतत बुद्धि निवृत्त हो जाती है, परंतु अब तक घट विवर्त है यह बात सिद्ध नहीं हुई है, ऐसी शंका का उत्तर कहते हैं। मृद रूपस्य घट का कारण मृतिका का स्वरूप परित्यागात परित्याग किए बिना ही अर्थात स्वरूप स्वस्वरूप से स्थिति हुए भी मृतिका से घट अभिव्यक्त होता है, इसलिए विवर्ततम असत्तत्व अन्याय भाव रूप विवर्त कार्यपना घटे स्थितम घट में स्थित है अर्थात स्थित होता है, अतः एव घट के मिथ्या स्वरूप की निवृत्ति बन सकती है। घट में मृतिका के स्वरूप का परित्याग ना होने पर भी घट मृतिका का परिणाम क्यों नहीं होगा, ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं। अंधे उन्हें विवर्त क्यों मान रहे हैं, परिणामवाद मान लो, चे रज्जु में सर्प जड़ा है वो ब्रह्म का विवर्त है, ऐसे क्यों मान रहे, परिणाम मान लो ब्रह्म का परिणाम है, वही बन जाता, ऐसे बन लो मिट्टी तो कड़ा बन गया, ऐसे ब्रह्म तो जगत बन गया, अंधा इदा मान लो, अंधा इदा नहीं मान सकते, क्यों, परिणामे पूर्व रूपम तजेत शीर रूपवत मृत स्वर्णे निवर्तते घट कुंडल योर नाही। अने परिणाम विच फर्क है केड़ा, परिणामे तत् परिणामवाद में कारण पूर्व रूपम तजेत पूर्व रूप का अर्थात कारण अपने स्वरूप का त्याग करता है।
पहला उसका स्वरूप खत्म हो
जाएगा, खत्म हो जाएगा, ताँ बनेगा दूसरा, उन्हें कहते प्रणाम। कैसे? शीर रूपवत, जैसे दुध का दही बन गया, दुध ने अपना स्वरूप का त्याग किया तो बन गया दही। अब दुध ना चाह बन सकती, दही ना चाह नहीं बन सकती, स्वरूप बदल गया ना। ये है प्रणाम। जैसे दूध अपने स्वरूप का परित्याग करके दधि रूप प्रणाम को प्राप्त होता है, विवर्तवाद में विवर्त कारण में पूर्व रूप का अपरित्याग कहाँ देखा गया? ऐसी आशंका करके मृत्तिका तथा स्वर्ण में देखा गया है, ऐसा उत्तर कहते हैं। अब कैसे कह रहे हैं? घाट कुंडल यो, मृत्तिका का विवर्त कार्य घाट और स्वर्ण का विवर्त कार्य कुंडल है ना। इन दोनों के बन जाने पर भी मृत स्वर्ण उन दोनों के कारण मृत्तिका तथा स्वर्ण ना निवर्तते, अपने स्वरूप का परित्याग करके निवृत्त नहीं होते, हो जाते। अर्थात अपने स्वरूप का परित्याग ना करने पर भी घाट कुंडल आदि कार्य के प्रतीत प्रति कारण बनते हैं ही, ये बात लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए मृत और स्वर्ण विवर्त कार्य के कारण का दृष्टांत बन सकते हैं। अंदर जी मिट्टी है, उन्हें अपना स्वरूप थोड़ी त्याग गया, जो पहला स्वरूप त्याग दिता फिर वो घड़ा बनी, वो तो अगले उदा ही बना लिया। सोना है, एक लंबी छड़ी है मान लो सोने की, उन्हें गोल करता खड़ा बन गया, छोटा जा छोटा करता तो बीबिया वास्ते बन गया, बड़ा बनाता तो गलदा बन गया। उन्हें अपने रूप का त्याग नहीं किया, इन्हू कहते विवर्तवाद। तो जेड़ा अपने स्वरूप का त्याग करके बनता वो प्रणामवाद हो गया। हाँ नहीं, स्वरूप का त्याग नहीं, स्वरूप का त्याग प्रणाम। हाँ स्वरूप का ना त्याग उन्हू विवर्त कहते। घाट मृतिका का विवर्त कार्य है, जह वार्ता नहीं बन सकती क्योंकि घट के नाश होने पर पुनः मृदभाव नहीं देखने में आता है, इस प्रकार आशंका करते हैं। कहते तुसी कड़ा क्या ना, कड़ा जेड़ा है मृतिका का केड़ा कार्य है? विवर्त कार्य। आंदे ओ नहीं गल बन सकती, कड़ा टुट जाता तो ठीकरियां दिखाई दिंदा, मिट्टी नहीं दिखाई दिंदी। शंकावादी शंका कर रहा हूं। घटे भगने न मृद भावा कपाल नामे वेक्षणात मैव चूर्णे अस्ति मृद रूपम स्वर्ण रूपम तत स्फुटम। घटे भगने मृद भावा न, घट के फुट जाने पर मृतिका रूपता पुनः नहीं रहती क्योंकि कपाल नाम वेक्षणात वहां कपालों का ही दर्शन होता है, मृतिका का नहीं। ना तुसी कहते मिट्टी जड़ी है कड़ा मिट्टी स्वरूप सी, तो मिट्टी अपना स्वरूप का त्याग नहीं करती, ते कड़ा टूट गया तो उसे ठीकरियां दिखाई दें, कपाल दिखाई दें, मिट्टी थोड़ी दिखाई दें। हाँ इसमें कपालों का नाश होने पर मृद भाव की उपलब्धि होती है, इस आशा से शंका का परिहार करते हैं। एवं माँ ऐसी आशंका मत करो क्योंकि चूर्णे मृद रूपम अस्ति, कपालों के चूर्ण से मिट्टी का स्वरूप है ना, कपालों ने चूर्ण कर दो तो मिट्टी है वो,
ठीक है रगड़ दो
मिट्टी बन गई। स्वर्ण रूपम तू कुंडल के नाश होने पर स्वर्ण का स्वरूप तो अतिस्फुटम अत्यंत स्पष्ट ही अनुभव में आता है, इसलिए पूर्वोक्त शंका का स्वर्ण दृष्टांत में अवकाश ही नहीं। अगर सोने का तो भवे कुंडल टूट भी जाए, सोने का सोने रहता, उन्हें तो रगड़ना ही नहीं
पड़ेगा।
प्रणाम के दृष्टांत दूध मृतिका स्वर्ण आदि कहे गए हैं, उनमें यदि मृत और स्वर्ण जे दोनों विवर्त के दृष्टांत आप स्वीकार करते हो तो मृद स्वर्ण में के समान ही दूध भी वर्त का दृष्टांत हो सकता है, ऐसी शंका करके उत्तर कहते हैं। आंदे इन्हां दोनों तुसी दृष्टांत मान लिया केड़ा विवर्त दा, ते दूध नू मान लिया परिणाम दा, उन्हूं भी वर्त मान लो। शीरादो परिणामो अस्तु पुनस्तद भाव वर्जनात् एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते। चिरादौ परिणामः अस्तु, दूध आदि दृष्टांत में परिणाम ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि पुनः नदी का नाश होने पर फिर तद्भाव वर्जनात् दूध रूपता नहीं रहती है, इसलिए दूध आदि विवर्त का दृष्टांत नहीं बन सकता।
वो
नहीं रहता दूध, फिर दही का दूध नहीं बन सकता, जो मर्जी ना दूध वाला काम ही कर सकता, स्वरूप खत्म हो जाना। तब तो दूध की न्यायी अवस्थान्तर को प्राप्त करने वाली मृतिका तथा स्वर्ण भी विवर्त के दृष्टांत नहीं बन सकते। ऐसी शंका का उत्तर उत्तरार्ध से कहते हैं, एतावता दुग्धादि परिणामी है, इतने मात्र से मृदादि नाम दृष्टान्तत्व मृतिका स्वर्ण आदि की विवर्त दृष्टांत रूपता ना हीयते, नष्ट नहीं होती। अभिप्राय यह है कि दूध तो पूर्व रूप परित्याग पूर्वक अवस्थान्तर को प्राप्त होता है, इसलिए दुग्ध परिणामी कारण है, और मृतिका तथा स्वर्ण तो अवस्थान्तर की उत्पत्ति होने पर भी पूर्व रूप का परित्याग ना करने से विवर्त कारण बन सकता है। वो तो मृतिका और स्वर्ण अपने रूप का त्याग नहीं करते, इसलिए विवर्तकारी है। परिणाम और विवर्त के कारण की न्यायी मृद और स्वर्ण दोनों को आरंभ के कारण भी क्यों नहीं मानते हो, ऐसी शंका का उत्तर कहते हैं। आरंभवादी ना कार्य मृदो गुण मापनतेत रूप स्पर्श अदयः प्रोक्तः कार्य कारणयोः पृथक्। आरंभवादी न्यायिकों के मत में कार्य मृदा घाट आदि कार्य से मृतिका आदि द्रव्य का द्विगुणम कार्यकार से और कारणकार से द्विगुण भावा आपतेत प्राप्त होता, तथा गुण गुरुत्व आदि तथा द्विगुण भाव प्राप्त होगा, क्योंकि गुरुत्व में भारीपना हाँ गुरुत्वाकर्षण हिंदे ना साइंस वाले गुरुत्वाकर्षण, ते आपा केदे हिसाब ना खड़े हैं गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में खिंचन शक्ति है जिन्हों कहने हैं ओदे ना एक बंदे का पता लगा कितना वजन है
उससे जाके ऊपर चंद्रमा से आधा वजन रह जाता
है। हाँ देख लो तो किधर गया बाकी
गुरुत्वाकर्षण
काटा ऐसे वो काश में उड़ते फिरते। द्विगुण भाव प्राप्त होगा क्योंकि रूप स्पर्शादया रूप स्पर्शादि गुणों के कार्य कारणयो कार्य और कारण दोनों से अर्थात गुणी और पृथक प्रोक्ता भिन्न ही आरंभवादियों ने कहा है। पहले ही कहता गुण अलग है गुणी अलग है और गुण गुणी भाव मानते हैं नहीं आयिक वाले एक कितना कर दोगे अर्थात अंगीकार किया है। तात्पर्य यह है कि आरंभवाद में कारण तथा कार्य का स्वरूप भिन्न भिन्न है, इसलिए घाट उत्पन्न होने पर एक तो कारण मिट्टी का स्वरूप और दूसरा कार्य घट का स्वरूप, इस प्रकार द्विगुण भावा को मानना होगा और दोनों का गुरुत्व अर्थात वजन भी अलग अलग होने से द्विगुण होना चाहिए। आ गया ना गुरुत्व का वजन और मृतिका का गुण और कार्य घट का गुण भी इस मत के पृथक पृथक होने के कारण उन रूपादि गुणों का भी द्विगुण भाव होना चाहिए, परंतु ऐसा द्विगुण भाव उपलब्ध नहीं होता, इसलिए मृत स्वर्ण को आरंभक कारण नहीं मान सकते। मृतिका और स्वर्ण ये दो ही केवल विवर्त का दृष्टांत है क्या, ऐसी शंका का उत्तर कहते हैं कि नहीं और भी दृष्टांत है। अंदर तड़को इन दो ही है,
भी
और भी है तड़को दृष्टांत कोई मृत्व स्वर्णमयश्चेति दृष्टांत तत्र मारुणी प्राहातो वासेत कार्य निरतितम सर्व वस्तुषु। ठीक से सुन लेना हूं
जदों जी हो हुंदे ने अर्थशास्त्र कुछ न
हो वैसे शास्त्र अर्थ हो गया
शास्त्र अर्थ हो रहे
है शास्त्र अर्थ है।
हां जी हां
शास्त्र अर्थ है सिद्धांती का और पूर्व पक्षी का। हां ठीक से सुन लेना हूं।
ठीक है
जी। ये आरुणी ये उदालक मुनि दा प्रसंग है छांदोग उपनिषद विच। उदालक मुनि अपने पुत्र स्वेदकेतु नौ वार उपदेश कीता सी तू ब्रह्म है तू ब्रह्म है ते तीन दृष्टांत दिते सी सोने दा मिट्टी दा लोहे दा। प्रसंग चलन लगा थोड़ी जी। अरुणी अरुण का पुत्र उदालक नाम ऋषि ने मृत स्वर्णमय चा कार्य से कार्य के मिथ्यात्व में मृत्ति का स्वर्ण तथा लोहा इति दृष्टांत त्रयम प्राह इस प्रकार तीन दृष्टांत जथा सौम्येकेना मृत्तिपिंडेना इत्यादि वाक्य से कहे हैं तथा उसके लिए जिसलिए मृदादि बहु दृष्टांतों के कार्य का मिथ्यात्व उपलब्ध होता है इसलिए सर्व वस्तुषु भूत भौतक सर्व वस्तुओं में कार्य नित्यत्वम वासेत कार्य के मिथ्यात्व का अनुसंधान करे। ये
कार्य दे मिथ्या बने दा
है। हां सौम्य अग्रसीत सौम्य ये जड़ा संसार तू देख रहा ना इस पहले सृष्टि थी उत्पत्ति तो पहले ब्रह्म सी
कार्य
ब्रह्म की थी
कारण
नहीं ब्रह्म कैसे सी कह रहे ना जरा सृष्टि संसार देख रहा ना ये उत्पत्ति तो पहले ब्रह्म सी क्यों ब्रह्म ते लीन सी ते ब्रह्म चो निकलिया ते ब्रह्म चो निकलिया ते कैसे निकलिया जैसे मकड़ी तंतु बनाउंदी आ उरनाभी नु कहंदे संस्कृत विच मकड़ी की करदी अपने अंदरों जाला निकालदी आ वो तंतु जेडे बनाउंदी आ घर जे अपना वो अपने अंदरों निकालदी आ हां ओ फिर लोड़ पैणे पर निकल भी जांदी आ बस यही ब्रह्म दा है अपने अंदरों सृष्टि कढ़दा है अपने अंदर ही लाइन कर लैंदा है ताए कहंदे ना घाट है ना बाढ़ है ना घाट बाढ़ होता है वो जेड़ा भगवान है ब्रह्म है वो सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो कट गया ऐसा नहीं है तो सृष्टि ओदे विच लीन होगी तो बढ़ गया ऐसा भी नहीं है वो एक हिसाब ही है समुद्र भी है समुद्र में सारियां निकल दिया नदियां तो समुद्र थोड़ी ना वादा ना
खेल 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 खेल
अंत को फिर एक ये है उदा दृष्टांत। कार्य के मिथ्यत्व अनुसंधान भी किसी प्रयोजन के लिए कहा गया है ऐसी शंका करके कारण के ज्ञान से कार्य के ज्ञान की सिद्धि के लिए कहा है। इस अभिप्राय से उत्तर कहते हैं कारण ज्ञान तह कार्य ज्ञानम चापि सो अवद सत्त ज्ञाने नृत ज्ञानम कथम मत्रोपपद्यते। कारण ज्ञान तह कारण मृद आदि के ज्ञान से कार्य विज्ञानम चा अपि घाटादि कार्य समूह का ज्ञान भी सा अवदत अरुण के पूर्वोक्त वाक्य से कहा है। वो मिट्टी का दृष्टांत दिता थे की क्या चलो आने वाला श्लोक उदे तो चलना
अरुण दा मुंडा है
अरुण दा मुंडा सी उदालक
उदालक
उदालक मुनि ने अपने पुत्र पूर्व के पुत्र का नाम सी स्वेद केतु ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਛਾਂਦੋਗ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਂ ਮਿੱਤੀ ਕਾ स्वर्ण आदि रूप परमार्थिक कारण के विज्ञान से कारण से विलक्षण घाट आदि का विज्ञान असंभव है इस प्रकार शंका करते हैं। अत्र असत्य ज्ञाने अनित ज्ञानम जहाँ प्रकृति में सत्कारण के ज्ञान से मिथ्या कार्य का ज्ञान कथम उचित कैसे सिद्ध होगा अर्थात सिद्ध नहीं होगा अंदर जो मिथ्या का ज्ञान है मिथ्या के ज्ञान से सत्य का ज्ञान कैसे हो जाएगा ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਬਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਿੱਥਿਆ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਐਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣਾ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਐਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਯ ਸਤ ਤਥਾ ਅਨਿਰਤ ਅੰਸ਼ ਦੁਆ ਰੂਪ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਕਾਰਯਗਤ ਸਤ ਅੰਸ਼ ਕਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਪ੍ਰੇ ਸੇ ਉੱਤਰ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਸਾ ਮ੍ਰਿਤਕਸਿਆ ਵਿਕਾਰਸਿਆ ਕਾਰਿਤਾ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਤਾ ਵਾਸਤਵੋ ਅਤਰ ਮ੍ਰਿਦੰਸ਼ੋ ਅਸਿਆ ਬੋਧਾ ਕਾਰਨ ਬੋਧਤਾ। ਸਾ ਮ੍ਰਿਤਕਸਿਆ ਵਿਕਾਰਸਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਭੂਤ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾ ਸਹਿਤ ਆਰੋਪਿਤ ਘਾਟਾ ਆਦਿ ਕਾਰਯ ਕੀ ਕਾਰਿਤਾ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਤਾ। ਕਾਰਯ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਤੂ ਇਸਮੇ ਇਤਨੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨ ਸੇ ਕਾਰਯ ਗਿਆਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾ ਕਿਆ ਪਰਿਹਾਰ ਹੁਆ? ਐਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾ ਕਾਰਯਗਤ ਅਨਿਰਤ ਅੰਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਰ ਵੀ ਕਾਰਯਗਤ ਸਤ ਅੰਸ਼ ਕਾ ਗਿਆਨ ਤੋ ਹੋਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਪ੍ਰੇ ਸੇ ਪਰਿਹਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਤਰ ਵਾਸਤਵ ਮ੍ਰਿਦੰਸ਼ ਕਾਰਯ ਮੇ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾ ਕਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਸਿਆ ਬੋਧ ਉਸ ਵਾਸਤਵ ਅੰਸ਼ ਕਾ ਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਬੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘੜਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੱਤ। ਹਾਂ, ਕਾਰ ਮੇ ਸੱਤ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਨਿਆਏ ਮਿੱਥਿਆ ਅੰਸ਼ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਐਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਥਿਆ ਅੰਸ਼ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਥਿਆ ਅੰਸ਼ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਥਿਆ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਸਭ ਜਾਣ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਸੱਤ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ। ਅਨਿਰਤ ਅੰਸ਼ੋ ਨਾ ਬੋਧ ਵਿਅਸ ਤਦ ਬੋਧ ਨਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਪੁਮਰਥਮ ਸਿਆਤ ਨਾ ਨਿਰਤਮ ਨਿਰਤਨ ਵਾਸ਼ ਬੋਧਨਾਤ। ਅਨਿਰਤਮ ਅੰਸ਼ ਬੋਧ ਨਾ, ਕਾਰਯ ਮੇ ਜੋ ਮਿੱਥਿਆ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਵਹ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਬੋਧਾ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਅਤਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਿੱਥਿਆ ਅੰਸ਼ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਆਪ ਉੱਤਰਾਰਧ ਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅਭਾਵ ਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ। ਤੱਤਵ ਗਿਆਨਮ ਤੱਤਵ ਕਾ ਅਰਥਾਤ ਬਾਧ ਰਹਿਤ ਵਸਤੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪੁਮਰਥਮ ਸਿਆਤ ਪੁਰਮਾਰਥ ਰੂਪ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਤਾ ਅੰਸ਼ ਵਾ ਬੋਧਨਮ ਨਾ, ਮਿੱਥਿਆ ਅੰਸ਼ ਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਕਾਰ ਕਾ ਗਿਆਨ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਰੂਪ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਮਿੱਥਿਆ ਪੈਣੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਥਿਆ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਕਾਰੀ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਹਿ ਤੋ ਸਰੋਤਾਂ ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਮੇ ਏਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਾ ਹੇਤੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਪਰੇ ਸੇ ਕਹਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਵਹਿ ਤੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਾਤ ਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਮਿਤੀ ਦੀਦੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਬੋਧਾਨ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾ ਬੋਧਾ ਯੁਕਤਮ ਸਿਆਦ ਕੁ ਅਤਰ ਵਿਸਮਯਾ। ਤਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਾਤ, ਤਬ ਤੋ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾ ਆਦਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਕਾਰੀ ਗਿਆਨਮ ਕਾਰੀਗਤ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾ ਆਦਿ ਸਤਪੰਚ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਤੀ ਈਰੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਦ ਬੋਧਾਤ, ਐਸਾ ਕਹਿਣੇ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾ ਗਿਆਨ ਸੇ ਮ੍ਰਿਤਿਕਾ ਕਾ बुद्धा मृत्यु की मृत्यु ही ज्ञात हुई अर्थात मृत्यु का ज्ञान होता है इति उक्तम स्यात् जह कहा गया। अत्र ऐसा होने पर का विस्मय क्या चमत्कार हुआ अर्थात शब्द में चमत्कार नहीं अंदर मिट्टी तुसी ये दसन दे भी एक कड़ा जेड़ा ये मिथ्या है मिट्टी साता ते की है ने लाभ की होया
की चमत्कार हो गया
की चमत्कार हो गया
जिद्दी बंदा
है तुसी कहन दे जे ओ कड़ा सत नहीं जे ओ मिट्टी साता चलो मान लिया मिट्टी साता ते की लाभ होया की सौरिया की ओदन सौरिया की है ना पूर्वोक्त विवेक का विवेकवानों के लिए विस्मय न होने पर भी विवेक रहित पुरुष के लिए विस्मय होता ही है इस आशा से पूर्व श्लोकुक्त शंका का परिहार करते हैं। अंधे जरा विवेकवान है ना उन्हें तो कुछ नहीं है अब विवेक क्यों उन्हें ज्ञान करवाना विवेक वाले को नहीं
वो
तो पहले उन्हें की करवाना है जरा पार निकल गया उन्हें पार करना जेडे डुबंडा है उन्होंने पार करना चाहिए हाँ वो तो हसदा बाद जो तो लोग गल कर मोक्ष दिया है मोक्ष होंगी है करना चाहिए वो हसदा हाँ ये जरा संसार है मिथ्या है ये वास्ते ये लड़ी झगड़ी जा रहे श्लोक चलेगा ना सप्तम कार्यशु वास्तवंश कारणमेति जानता विस्मयो मिद्ञा विस्मय केन वर्तेत सत्यम कार्येषु ठीक है परंतु घटादि कार्य में वास्तवंश कारण आत्मा विद्यमान वास्तव अंश कारण स्वरूप ही है इति जानता विस्मय मास्तु इस प्रकार जानने वाले को असर्ज मत होवे हाँ असर्ज शायद पता ही नहीं सी विस्माद उत्पन्न होने वाले आश्चर्य केवल वारेत कौन निवारण करेगा अर्थात किसी से भी निवारण करने को शक्त नहीं है अंधे अविवेकी नु ज्ञान करा रहे हैं आप विवेकवान नहीं विवेक विवेकवान आश्चर्य नहीं होगा वो तो सगो हसदा है जेड़ा अज्ञानी आश्चर्य होंगे ओनू विस्मय होगा ये सब मिट्टी है अच्छा ओनू विस्मय होगा अवेकी को असर्ज होता है आखो इतने असर्ज करता उदार्थ विस्मय का अवेकी को असर्ज होता है इस उक्त अर्थ को विस्तार से कहते हैं आरंभी परिणामी चा लौकिक चैक कारण ज्ञाते सर्वमितिम श्रुत्वा प्राप्नुवन्तेव विस्मयम् आरंभी चा समवायी असमवायी और निमित्त इन त्रिविध कारणों से भिन्न ही कार्य की उत्पत्ति का नाम आरंभ है आरंभ में समवाय कारण निमित्त कारण उपादान कारण न्याय वाले समवाय या समवाय ये थोड़ा जा समझ लो न्याय वाले हुण वेदांती दो कारण मानते हैं केड़ा उपादान कारण और निमित्त कारण उपादान कारण हो गया घड़े दे विच जिहड़ी जिहड़ी मिट्टी है वह होगी उपादान कारण घमियार हो गया निमित्त कारण ये दो कारण ये तीन मानते हैं न्याय वाले केड़े मानते हैं कि समवाय असमवाय और निमित्त निमित्त तो उही हो गया समवाई है ना ये तो हो गया उपादान कारण समवाई और निमित ए तो एक असमवाई कारण जेड़ा दो कपालों का संयोग ओनू कहिंदे आ असमवाई कारण कैसे जैसे ये कपड़ा बनिया ना ये कपड़ा एदे विच की है तंतु न्याय वाले नू की कहिंदे आ ਇਹਨੂੰ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਸਮਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ
ਇਹਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੰਤੂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਵਾਈ ਕਾਰਨ, ਘੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੰਤੂ ਦੋ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਵਾਈ ਕਾਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਭਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ,
ਉਹਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਾਲ, ਉਹ ਕਪਾਲ ਦੋ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਵਾਈ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਪਾਲ ਦੋਏ ਸੰਯੋਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਵਾਈ ਕਾਰਨ। ਘੁਮਿਆਰ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੇ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਇਆ ਨਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਗਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਅਸਮਾਈ ਸਮਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਆ ਸੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਸਮਵਾਈ ਅਸਮਵਾਈ ਔਰ ਨਿਮਿਤ ਇਨ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨੋਂ ਸੇ ਬਿਨ ਹੀ ਕਾਰਯ ਕੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਾ ਨਾਮ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੋ ਆਰੰਭ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਰੰਭਵਾਦ। ਆਰੰਭਵਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੰਭ, ਚਾਹੇ ਆਰੰਭ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਣਕ ਬਣਿਆ, ਪਰਮਾਣੂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਣੂ ਮੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਮੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਣਕ।
ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ
ਨਾ, ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਲੇ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਦੁਣਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੁਣਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ,
ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ,
ਫਿਰ ਐਸੇ ਦੁਣਕ ਬਣੇ, ਦੁਣਕ ਮਿਲ ਗਏ, ਐਸੇ ਵੱਧ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੰਭਵਾਦ। ਉਹ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਈ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਈ ਕਾਰਨ। ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਲੇ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਖਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਗੰਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ, ਗ੍ਰਸ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਲ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਮਾਤਰਾ ਬਣੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਨ ਮਾਤਰਾ ਭੰਗ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਠੋਸ ਸਿਤਪੂਤ ਜਾਊਗਾ।
ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ
ਗੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ,
ਸੂਲ ਸਰੂਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਨ ਮਾਤਰਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਭੂਤ
ਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ ਕੁਦਰਤ,
ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਗੰਧ ਗੁਣ ਗ੍ਰਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਜਲ ਜਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓਗੇ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ।
ਚਲੋ,
ਔਰ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਪੂਰਵ ਰੂਪ ਕਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹ ਲੌਕੀ ਕਹਾ, ਔਰ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਓਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਲੌਕ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਾਇਣ ਪੁਰਸ਼, ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਾਇਣ ਪੁਰਸ਼, ਖਾਲੀ ਲੋਕ ਲੌਕਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਲੌਕਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਕਿਕ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਏਕ ਕਾਰਨੇ ਗਿਆਤੇ, ਏਕ ਕਾਰਨ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਪਰ ਸਰਵਾ ਮਤਿਮ ਸਭ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸ੍ਰੁਤਵਾ ਸੁਣਕਰ ਵਿਸਮਯਮ ਪ੍ਰਾਪਨੁਵੰਤੀ ਏਵ, ਵਿਸਮੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਵਿਵਰਤ ਦੀ, ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕਿਕ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਸਬਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਸ਼ਾਂਦਵ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਦਵ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਉਦਾਹਰਣ। ਸ਼ਾਂਦਵ ਸੁਰਤੀ ਵਾਕੇ ਕੇ ਜਥਾ ਜੁਗਤ ਅਕਸ਼ਰ ਅਰਥ ਕਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨੇ ਮੇ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਆਸ਼ੰਕਾ ਕਾ ਉੱਤਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਵਾਕੇ ਕਾ ਅਕਸ਼ਰ ਅਰਥ ਮੇ ਤਾਤਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤਾ ਉਕਤ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤੀ ਆ ਵੇਦ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸ਼ਰ ਅਰਥ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਂਦੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤਾਤਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤਾਤਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਗੁਪਤ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜਦਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੇਦ ਕਹੂਗਾ, ਇਹ ਨੀ ਵੇਦ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਛਕਣਾ, ਕੈਸਾ ਛਕਣਾ, ਸਾਤਵਿਕ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਵੈਤੇ ਅਭਿਮੁਖੀ ਕਰਤੋ ਨੇਵ ਵੇਤ ਨਾ ਵਾਤਰ ਕਸਿਆ ਬੋਧਤਾ ਸਰਵਬੋਧਾ ਸੁਰਤੋ ਨੇਵ ਨਾਨਾ ਤਸਿਆ ਵਿਵਕਸ਼ਯਾ। ਅਦਵੈਤੇ ਅਦਵੈਤ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇ ਅਭਿਮੁਖੀ ਕਰਤਮ ਏਵ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਅਭਿਮੁਖ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਭਿਮੁਖ ਬਣੇ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ,
ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਭਿਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਭਿਮੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਬ੍ਰਹਮ ਵੱਲ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਮਨੋਯੋਗ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੀ ਅਤਰ ਸ੍ਰੁਤੇ ਏਵਸਿਆ ਬੋਧਤਾ ਜਹਾਂ ਸੁਰਤੀ ਮੇ ਏਕ ਕਾਰਨ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸੇ ਸਰਵ ਬੋਧਾ ਸਰਵਕਾਰਿਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਤਸਿਆ ਵਿਵਕਸ਼ਾ ਅਨੇਕ ਕਾਰੀ ਕੋ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਵਿਵਕਸ਼ਾ ਸੇ ਅਰਥਾਤ ਕਹਿਣੇ ਕੇ ਵਿਪਰੇਸ਼ੇ ਨਾ ਏਵ ਉਕਤ ਵਾਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਤਾਤਪੁਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਘੜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਪਏ ਆ ਕਹਿ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਬਰਤਨ, ਚਲੋ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਲਿਖੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਬ ਏਕ ਹਾਂ ਅਬ ਏਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸੇ ਸਰਵ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਯਥਾ ਸੌਮਯ ਇਤਿਆਦਿ ਵਾਕੇ ਕੇ ਅਰਥ ਕਾ ਨਿਰੂਪਣ ਪੂਰਵਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਿਕ ਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਤ ਉਤ ਆਦੇਸ਼ਮ ਇਤਿਆਦਿ ਵਾਕੇ ਸੇ ਅਰਥ ਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੋਏ ਫਲਿਤ ਅਰਥ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਸੁਣ ਲੋ, ਏਕ ਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿਗਿਆਨਾਤ ਸਰਵ ਮ੍ਰਿਣਮਏ ਧੀਰ ਜਥਾ ਧੀਰ ਧੀਰ ਬਣੇ ਧੀ ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਥਾ ਬਣੇ ਜੈਸੇ ਤਥੇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਧੇ ਨ ਜਗਦ ਬੁੱਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਵਿਆਤਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਏਕ ਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿਗਿਆਨਾਤ ਏਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਤਨ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਘੜਾ ਏਡਾ ਕਾ ਬੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸੋਰੇ ਪਏ ਆ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਆ ਪੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋ ਰੰਗ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਾਰ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਪੀਪਾ ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪਏ ਆ, ਆਹ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨੀ ਕਾਹਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨੀ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਘੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਘੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਘੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਬਈ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਭਗਵਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਅਰਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਰ
ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਤਪੁਰ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿੱਥਿਆ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਘੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਰੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਜਾਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਭਾਈ,
ਜਿਤਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਔਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਆ, ਆ ਜਿਤਨੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਲੋਹੇ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਘੜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਹੈ, ਕਟੋਰੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗਈ। ਐਸੇ ਹੀ ਇਹ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ, ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ,
ਹਾਂ
ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਥਾ ਏਕ ਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿਗਿਆਨਾਤ, ਜੈਸੇ ਘਟ ਆਦਿ ਕੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਏਕ ਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਸਰਵ ਮ੍ਰਿਣਮੈ ਦੀ ਮਿਤਿਕਾ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਘਾਤਾਧਿਕਾਰੀਓ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਏਕ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਧੇ ਨਾ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਵ ਜਗਤ ਕਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਏਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਜਗਤ ਬੁੱਧੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਯ ਰੂਪ ਜਗਤ ਕਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਐਸੇ ਜਾਣੋ। ਬਸ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਜਗਤ ਕਾ ਇਨ ਦੋਨੋ ਕੇ ਸਰੂਪ ਕਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੇ ਜਗਤ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਅਸ਼ਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਾਕੇ ਕੇ ਅਰਥ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਕੇ ਅਭਿਪ੍ਰੇ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਜਗਤ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕੇ ਲੀਏ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤਰਾਰਥ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਤਾਪਨੀ ਇਤਿਆਦਿ ਸੂਰਤੀਓ ਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰੂਪ ਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ।
ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।